جزاك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے. اور ہم نے پچھلی کلاس کے اندر نئی آیات پڑھنی شروع کریں تھیں، آگے کی آیات، آیت نمبر 45 اور 46، ان کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. اور آج جو ہے وہ 47 اور 48 کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے، انہی کی ابھی تلاوت کی گئی تھی. تو ان آیات میں یا ان مجموعہ آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے بات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے درمیان حجاب مستورہ بنا دیتے ہیں، یعنی ایک حجاب بنا دیتے ہیں. حجاب کے بارے میں کافی بات ہوئی تھی کہ حجاب اس رکاوٹ کو کہتے ہیں، اس پردے کو کہتے ہیں کہ جس سے آر پار نظر نہیں آتا، جس سے کہ آر پار نظر نہیں آتا، یعنی اس طرف والے اس طرف نہیں دیکھ سکتے، اس طرف والے اس طرف نہیں دیکھ سکتے. اب وہ کوئی پردہ ہو جو کہ درمیان میں لوگوں کے پڑا ہوا ہو، یا وہ کسی کے بدن کے اوپر کوئی پڑی ہوئی چادر ہو، ٹھیک ہے، کوئی کپڑا ہو کہ جس سے کہ اس کا بدن نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو جو ہے وہ حجاب کہا جاتا ہے. یہاں پر حجاب کی ایک صفت بیان فرمائی کہ ہم کیسا حجاب بنا دیتے ہیں، مستورہ، ستر والا. ستر کہتے ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہو، مستور، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کو جو ہے نا وہ یعنی مستورہ کہتے ہیں، مستور کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ستر جو ہے وہ چھپانے والی چیز ہے. بہت ساری عورتوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے بال ستر میں داخل کیے ہیں. ستر میں بال جو ہیں وہ ستر ہیں. ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والی چیز. تو جس طریقے سے پیر ستر ہے، پیٹ ستر ہے، اسی طریقے سے بال بھی ستر میں داخل ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ غیر محرم کے سامنے یہ والا ستر نہیں کھول سکتے ہیں، بال غیر محرم کے سامنے نہیں کھول سکتے ہیں. محرم کے سامنے بال کھولے جا سکتے ہیں لیکن غیر محرم کے سامنے بال نہیں کھولے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نا عورتوں کے لیے دونوں باتیں آ گئیں، ایک ہوتا ہے ستر اور ایک ہوتا ہے حجاب، ٹھیک ہے. ستر ایک الگ چیز ہے، حجاب ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ستر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے رکھا ہے. مردوں کا ستر یہ شریعت میں ڈیفائنڈ ہے کہ مردوں کا کتنا ستر ہوتا ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہے ائمہ میں کہ جی گھٹنے ستر میں داخل ہیں کہ گھٹنے ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا مردوں کا ستر ہے، یعنی اتنے بدن کے حصے کو مردوں کو ہر ایک کے سامنے سے چھپانا ہے، ہر ایک سے چھپانا ہے، ٹھیک ہے. عورتوں کا جو ستر ہے وہ ان کا پورا بدن ہے سوائے چہرے کے. عورتوں کا بدن پورا سوری عورتوں کا ستر پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، اور پیر کے بھی جو ہے وہ نیچے کے والے حصے کے، یعنی جس کو وہ فرشی حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پورا کا پورا ستر ہے ان تین چیزوں کے علاوہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ سے، یہ ابھی یہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ ریفائن نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے ایسا ہی تھا، یہی ستر تھا، दूसरों से छुपाना था। लेकिन चेहरा जो है औरतों का वजूद दूसरों से छुपाना, यानी उनको मस्तूर रखना, अलग रखना, ठीक है, पर्दे के पीछे रखना, ये नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आ जाने के बाद अल्लाह ताला ने इसको शरीयत का हिस्सा बनाया, उससे पहले नहीं बनाया। हिजाब का हुक्म 5 हिजरी के अंदर आया, और सूरह अहजाब के और सूरह नूर की आयात के नुजूल के साथ हिजाब का हुक्म आया, ठीक है। ये पहले नहीं था, यानी नबी अलैहिस्सलाम के भी जिंदगी में 5 हिजरी से पहले हिजाब का हुक्म नहीं था, सिर्फ सतर का हुक्म था, सिर्फ सतर का हुक्म था, यानी बालों को छुपाना और बाकी बदन को छुपाना। हिजाब का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आया 5 हिजरी के अंदर, जब हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ाया, अल्लाह ताला ने, यानी बगैर किसी इंसान के, बगैर किसी निकाह ख्वान के, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आसमानों के ऊपर जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम का निकाह फरमाया। उस वक्त जो है वो हिजाब की आयात नाजिल हुई, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, और कुदरतन इस आयत के अंदर अगरचे के ये अल्फाज किसी दूसरे मानी में इस्तेमाल हुए हैं, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अल्फाज यहाँ पे जमा हुए हैं, कम से कम लफ्ज जो है ना वो दोनों के दोनों, सतर भी और हिजाब भी यहाँ पे जमा हो गया है। तो इसको बहाना के तौर पे हमने इस्तेमाल किया और आपके सामने हिजाब और सतर की भी बात को रिपीट कर दिया। आगे फरमाते हैं, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, कि हम पढ़ चुके हैं, तो खैर इसका खाली तर्जुमा रिपीट करना था, कि हम रखते हैं उनके दिलों पर पर्दा कि उनको ना समझ, कि उसको ना समझें, और उसके कानों में बोझ, और जब जिक्र करता है तो कुरान में अपने रब का अकेला कर कर भागते, तो ये यानी आप अपने रब का आप अकेला करके जब जिक्र करते हैं ना, तो भागते हैं ये अपनी पीठ पर बिदक कर, नफरत के साथ, नुफूरन भागते हैं ये। खुलासे तफसीर में इंशाल्लाह फिर से इसको पढ़ेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहनु आलम, हम ज्यादा जानते हैं, आलम ज्यादा जानना, ठीक है, हम ज्यादा यानी हम खूब जानते हैं, जिस तरह उर्दू में कहते हैं, बिमा यस्तमिउन बिही, उस वास्ते से कि यानी किस वास्ते से वो सुनते हैं आपको, किस वास्ते से, यानी उनकी नीयत क्या होती है जब वो आपको सुन रहे हो, हम ये बात यानी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वो आपको सुन रहे होते हैं ना तो क्यों सुन रहे होते हैं, यानी उनके दिल की नीयत क्या होती है। इज यस्तमिउना इलैक, जिस वक्त वो आपकी तरफ कान रखते हैं, इस्तमा यस्तमिउ का मतलब खाली समिया यस्मऊ नहीं होता, समिया यस्मऊ का मतलब होता है सुनना, इस्तमा यस्तमिउ का मतलब होता है बहुत कान लगा के सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खूब जानते हैं कि जिस वास्ते वो से वो सुनते हैं, जब वो सुनते हैं, यानी जब वो आपकी बात को सुन रहे होते हैं ना, तो उनके दिल में क्या नीयत होती है, क्या वजह होती है उनके सुनने की। वह और इज हुम नजवा, और जब वो नजवा मशवरा, यानी आपस में सरगोशियां करते हैं या आपस में मशवरे करते हैं, ठीक है, आपस में मशवरे करते हैं, सरगोशियां करते हैं, यानी हम इसको भी जानते हैं कि जब वो आपस में सरगोशियां कर रहे होते हैं, जब वो आपको सुन रहे होते हैं तो वो किस नियत से सुन रहे होते हैं, और जब वो सरगोशियां कर रहे होते हैं तो वो अल्लाह ताला उनकी सरगोशियों को भी जानते हैं। इज यकूलु ज़ालिमून, जब जालिम लोग कहते हैं, जालिम यानी गुनाहगार, और यहाँ पे जालिम से मुराद सबसे बड़े गुनाहगार यानी मुशरिक काफिर, जब ये काफिर कहते हैं, इन तत्तबिउना, नहीं तुम इत्तेबा करते हो, इन नाफिया, नहीं तत्तबिउना तुम इत्तेबा करते हो, इल्ला रजुलम मस्कूरा, सिवाय एक ऐसे मर्द की कि जो के सहर जदा है, जो कि मशहूर है, जिसके ऊपर जादू हो गया है, नबी अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को, नबी अलैहिस्सलाम के मुत्तबीईन को, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, उन लोगों से ये कहते हैं कि तुम लोग तो एक मशहूर इंसान को फॉलो कर रहे हो जिसके ऊपर जादू हो गया है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा तुम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। इन तत्तबिउन इल्ला रजुलन मस्कूरा, ठीक है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, उसी तरीके से इन तत्तबिउन इल्ला रजुलन मस्कूरा, तुम किसी को फॉलो नहीं कर रहे सिवाय एक मशहूर इंसान के। यानी बहुत ही यानी ताकीद के साथ और बहुत ही यकीन के साथ, अपने यकीन के तौर पे वो अपने अपने यकीन के साथ वो सहाबे कराम को कहते थे कि तुम तो एक जादू याफ्ता इंसान को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अम्थाला, देखिए तो जरा, उन्जुर नजर तो करिए जरा, देखिए तो जरा, कैफा ज़रबू लकल अम्थाल, कैसे ये मिसालें बांध रहे हैं आपके ऊपर, यानी कैसी मिसाल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपकी हालत को, आपके सहाबा को समझाने के लिए ये कैसी मिसाल दे रहे हैं, कैसी मिसाल बांध रहे हैं आपके ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल दैट दे आर स्ट्राइकिंग अपॉन यू या अबाउट यू। ठीक है, जोराबू का मतलब तो होता है मारना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्ट्राइक, तो अंग्रेजी में भी ना स्ट्राइक एन एग्जाम्पल का मुहावरा इस्तेमाल होता है, स्ट्राइक एन एग्जाम्पल, तो अरबी के अंदर भी ज़रबु लकल अमसार, ठीक है, उर्दू में हम ये नहीं कहते मिसाल मार रहा है, उर्दू में हम ये मिसाल मारने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उर्दू का मुहावरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मिसाल देने का मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैफ ज़रबु लकल अमसार, कि कैसे ये आपके ऊपर मिसालें जमा रहे हैं, बांध रहे हैं, फ़ज़ल्लू बस ये गुमराह हैं, ये बहकते फिरते हैं, फला यस्ततीऊना सबीला, इनकी इस्तेताअत नहीं है रास्ता जानने की, ठीक है, सीधा रास्ता पाने की ना इनके, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, इनके बस की बात नहीं है ये, ठीक है, इनके बस की बात नहीं है कि ये सीधा रास्ता समझ जाए, पा जाए। ठीक है, बस की बात का मतलब, जब हम कहते हैं किसी के तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वाकई उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, हम किसी को कहते हैं ना कि तो कोई जो है ना, वो कोई काम करने की कोशिश कर रहा है तो उससे काम हो नहीं रहा, उससे काम हो नहीं रहा, तो हम कह देते हैं उसको उठ के लिए ना जरा सा तंजिया तौर पर भी कह तंजिया तौर पर कह देते हैं, या उसको जो है ना वो जरा डिस्करेजिंगली कह देते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि वाकई उसके बस की बात नहीं, लेकिन वो कोई ऐसी बेवकूफी कर रहा है, वो कोई ऐसी जो है ना वो खराबी कर रहा है कि जिसकी वजह से ना वो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो उस खराबी को छोड़ दे तो फिर वो कामयाब हो सकता है, कोई काम करने में वो कामयाब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास हाथ ही नहीं है जिससे कि वो काम करे, हाथ तो उसके पास है, अगर हाथ ही नहीं होते तो फिर हम क्या, कभी आप किसी लूले, लूला कहते हैं जिसके हाथ नहीं होते, ठीक है ना, आप किसी लूले इंसान को ही नहीं कहेंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये काम कर सको, नहीं, आप ये नहीं कहते, जिसके हाथ नहीं है उसको ये नहीं कहते कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये काम कर सको, ठीक है, क्योंकि ये उसको भी पता है कि उसके बस की बात नहीं है, आपको भी पता है कि उसके बस की बात नहीं है, आप ये कहते नहीं है उसको, आप ये तो उसको कहते हैं कि जिसके हाथ हैं, जिसके पैर हैं, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास आंखें हैं, जिसके पास कान है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अपनी अकल को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे गलत इस्तेमाल कर रहा है कि उससे वो काम नहीं हो पा रहा है, तब आप कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इसी तरीके से इन काफिरों को कह रहे हैं, के बारे में कह रहे हैं, वला यस्तती सबीरा, इनके बस की बात नहीं है कि ये सीधा रास्ता इख्तियार कर सकें, ठीक है, वजह क्या है, सब कुछ इनके पास है लेकिन जिद, इनकी जिद आड़े आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बस की बात नहीं है कि ये सीधा रास्ता इख्तियार कर सकें, तो ये गुमराह है, बदल लू ये रास्ते से गुमराह है। खुलासा तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयान और कुरान से हजरत अशरफ हजरत मुस्लिम शफी रहमत ने नकल फरमाते हैं, तो इसमें भी फिर थोड़ी सी तफसीर होती है और जो है वो साथ साथ तर्जुमा भी चलता रहता है। तो इन आयात के तहत
थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि साबिता आयात में जिक्र था कि तौहीद का मजमून कुरान मजीद में मुख्तलिफ उनवानात और मुख्तलिफ दलाइल के साथ बार बार जिक्र होने के बावजूद ये बदनसीब मुशरिकीन उसको नहीं मानते हैं। यानी इतना हमने खोल खोल के बयान कर दिया, इतनी मिसालों से बयान कर दिया, इतनी जो है वो दलीलों से, अकली भी दलीलें हैं, नकली भी दलीलें हैं, लेकिन ये मुशरिकीन नहीं मानते, ये बदनसीब है। बदनसीब का मतलब इनको जो है ना वो नसीब में से हिस्सा नहीं मिला, अच्छा हिस्सा नहीं मिला, बल्कि इनको जो है ना वो बुरा हिस्सा मिला, यानी ये बदनसीब है। इन आयात में इनके ना मानने की वजह बताई गई, वजह, हर चीज की एक वजह होती है, एक रीजन होता है, एक कॉज होता है, ठीक है। कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसका भी कोई रीजन होता है, कोई इंसान बुरा काम करता है उसका भी कोई रीजन होता है, राइट। बगैर रीजन के कुछ नहीं होता, बगैर कॉज के, बगैर वजह के कुछ नहीं होता, हर चीज की एक वजह है, ठीक है। क्यों नहीं होता बगैर वजह के? कुछ भी बगैर वजह के क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजह है कि बगैर वजह के कुछ नहीं होता? ये अगर हम आपसे पूछें, इसकी क्या वजह है कि बगैर वजह के कुछ नहीं होता? जी, क्या जवाब देना चाहिए कि इसकी क्या वजह है कि बगैर वजह के कुछ नहीं होता? कोई रोशनी डाले इस बात के ऊपर? इसकी क्या वजह है कि बगैर वजह के कुछ नहीं होता? जी, इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बगैर वजह के कोई चीज पैदा नहीं की है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया है, अगरचे केश थोड़ा सा मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन अच्छा जवाब है। हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, इसलिए बगैर वजह के कुछ नहीं होता। ये भी अच्छा जवाब है। अल्लाह पाक ने दुनिया असबाब के तहत रखी है, ये भी चले अल्हम्दुलिल्लाह। चारों जवाब जो आए हैं ना, आखिरी जवाब है अल्लाह ताला ने बनाया है हर चीज को एक मकसद के लिए, ठीक है। चारों जवाब अच्छे जवाब है, क्योंकि चारों के अंदर अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चारों जवाबों के अंदर अल्लाह का जिक्र है, ठीक है ना। और यही वजह है कि भाई जो कुछ भी होता है वो अल्लाह करता है, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह करता है, और अल्लाह हिकमत वाला है, हकीम है, अल हकीम है, अल्लाह ताला अल हकीम है, ठीक है। तो पांचवा जवाब क्या था कि हाकिम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, हाकिम का नहीं, हकीम का कोई काम, ठीक है। प्रॉपर मुहावरा यह है कि फिलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, कोई काम हकीम का जो है ना वो हिकमत के बगैर नहीं होता। तो भाई जब सारे काम दुनिया में जो हो रहे हैं वो हकीम अल हकीम के किए हुए काम है, तो उनमें हर काम की कोई वजह है, बगैर बेवजह कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने बेवजह कोई चीज बनाई नहीं, ना जो मादी चीजें नजर आती हैं वो, जिनको के जरा टेक्निकल लैंग्वेज में या मंतक की लैंग्वेज में जौहर कहते हैं, एटॉमिक चीजें कहते हैं, एटम, राइट। ना तो एटॉमिक चीजें अल्लाह ताला ने बगैर वजह के बनाई हैं, और ना जो उरूस कहते हैं, राइट, यानी जो जो फिजिकली परसीवेबल चीजें नहीं है, वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई है ना। यानी जो अफआल हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, ये सब भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। इनकी कोई, इनका कोई जिस्म नहीं होता, इनका कोई जौहर नहीं होता, इनका कोई मादा नहीं होता, लेकिन ये जो फेल हैं ये भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो ना तो कोई जिस्म बगैर मकसद के बनाया गया, ना वो जिस्म जो कोई काम करता है वो बगैर मकसद के होता है, ठीक है। तो खुद बखुद अगर चीजें हो रही होती ना, खुद बखुद, यानी कोई बनाने वाला होना ना होता, कोई करने वाला हो ना होता, तो अगर खुद ब खुद चीजें हो रही होती ना, तो फिर उनके अंदर कोई वजह नहीं होती। तो क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, वो वजह फिर कोई कहता भाई है, कोई कहता नहीं है, ठीक है। तो एक है बनाने वाला, एक है चलाने वाला, इस वजह से हर चीज की वजह है। तो इन इन आयात में उनके ना मानने की वजह बताई गई। भाई अगर ये लोग नहीं मान रहे तो उसकी क्या वजह है? वो ये है कि ये इन आयात में गौर व फिक्र नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, यानी गौर से सुनते हैं, जिसको हम उर्दू उर्दू जुबान में कहते हैं ना, कान लगा के सुनना, टिकटिकी बांध के सुनना, ठीक है, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। क्या मतलब क्या है फिर? गौर से सुनते तो हैं लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते। तो पहले गौर का मतलब ये है कान लगा के सुनना, और दूसरे गौर जिसको कि ये नहीं करते, उसका मतलब ये है सोचना, फिक्र करना, ठीक है ना, अपना अपना जहन जो है ना वो खोल करके उसके ऊपर लगाना, ठीक है ना, बांध करके अपने जहन को उसके ऊपर नहीं लगाना, बल्कि खुले जहन से उस बात को सुनना। तो क्यों? बल्कि उनसे नफरत और तमस्खुर करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्ला हकीर समझते हैं, अपने से कमतर समझते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को गलत समझते हैं, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम से नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? ये नबी अलैहिस्सलाम से नफरत नहीं करते थे, ठीक है, मक्का मुकरमा के काफिर ये नबी अलैहिस्सलाम से नफरत नहीं करते थे, ये नबी अलैहिस्सलाम से मुहब्बत करते थे, ये नबी अलैहिस्सलाम से मुहब्बत करते थे। तो फिर यहाँ क्यों लिखा हुआ कि ये नबी अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे? ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम की जात से मुहब्बत करते थे, नबी अलैहिस्सलाम की जात से, इस बात से मुहब्बत करते थे कि ये कुरैश के फर्द हैं, ये अबू तालिब की औलाद में से हैं, और अबू तालिब जो है ना ये हमारे सरदार हैं, अबू तालिब नहीं बल्कि अब्दुल मुतलिब है ना, अब्दुल मुतलिब जो है हमारे सरदार हैं, उनके जो है ना वो एक बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, बेचारे जो है वो बहुत ही कम उम्र के अंदर दुनिया से चले गए, अब ये उनकी निशानी है। जैसे जैसे कोई फैमिली वाले ना अपने किसी भाई की, अपनी कजन की खास मोहब्बत उससे होती है कि भाई इसका बाप जो है ना वो तो दुनिया से चला गया, अब ये हमारे भाई की निशानी है, कितना मोहब्बत करते हैं खानदान वाले लोग ऐसे किसी बच्चे के साथ। नबी अलैहिस्सलाम से ये लोग ऐसे मोहब्बत किया करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम की सिफात की वजह से और भी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सादिक हैं, अमीन हैं, अपनी अमानतें रखवा करके जा रहे होते थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है, और बाकायदा इसका बरमला इजहार करते थे कि ये तो अल अमीन है, ये तो अमीन है, ठीक है, सब बातों से मोहब्बत करते थे। तो फिर नफरत कहां से आ गई? नफरत कहां से आ गई? नफरत सिर्फ उस वक्त शुरू हुई है जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी इस्लाह का काम शुरू किया, इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना शुरू किया, और इनको कहना शुरू किया कि नहीं, तुम ये जो हज कर रहे हो, मिसाल के तौर पर ये जो तुम हज कर रहे हो ना, ये गलत तरीके से हज कर रहे हो, ये वो तरीका नहीं है जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे हज किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे हज किया था, तुम उस तरीके से हज नहीं कर रहे, तुमने अपनी तरफ से इसके अंदर तब्दीलियां करी हुई हैं, ठीक है, तुम जो ये नमाज पढ़ते हो काबतुल्ला के सामने, राइट, ये जो तुम सीटियां बजाते हो, ये जो तुम मुक्के इधर उधर चलाते हो, ये नमाज का तरीका नहीं है, तुमने सामने बुत रखे हुए हैं, ये बुत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्ला बनाया था तो उस वक्त थोड़ी रखे थे, ठीक है, तो बुतों की परस्तिश, बुतों के सामने सजदा करना, ये तुम गलत करते हो, ये तुम गलत करते हो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी गलतियां पॉइंट आउट करनी शुरू करी है ना, उसके बाद नफरत शुरू हुई है, उसके बाद नफरत शुरू हुई है, उससे पहले नफरत नहीं थी बल्कि शदीद मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल ऐसी जैसे आज किसी खानदान का बच्चा जो है ना उसको सारे खानदान वाले बहुत पसंद करते हैं, हमारे खानदान का बच्चा है, हमारा चश्म चिराग है, हमारा जो है वो ये है वो है सब कुछ है, लेकिन वो बच्चा अम्मी आप ये जो कर रही है ना ये तो गलत है, ये तो आपने किसी के साथ जो ज्यादती करी हुई है, राइट, आपने ये किसी का हक मारा हुआ है, आप जो है वो किसी के साथ बदतमीजी करती हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब उसके बाद देखें अम्मा का क्या रिएक्शन आता है बच्चे के ऊपर, है ये नहीं कि नहीं बच्चे तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो मेरे आग के दुलारे हो, तुम तो मेरे लाडले हो, तुम जो अगर मेरी गलती की इसलाह कर रहे हो ना, तो हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी, राइट। शायद वो नादर कोई ऐसी माँ होती है जो कि अपने बच्चे की ऐसी बात मान लेती है, नहीं मानती है ना, उसके बाद से फिर वो बच्चे को वो टिका के मारती है, अगर मार सकती है तो मारती है, नहीं मार सकती है तो फिर उससे नाराज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ये मामला जो है वो मुशरिकी ने मक्का ने भी किया था नबी अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक है, तो नफरत की वजह नबी अलैहिस्सलाम की दीन की दावत थी, तबलीग थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने नजरियात का इजहार करना शुरू किया था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के नजरियात पहले भी ऐसे ही थे कि बुतों की परस्तिश गलत है ना। ये तो नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने से पहले गारे हिरा के अंदर, उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम बुतों की परस्तिश को अच्छा समझते थे, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तो पहले भी बुरा समझते थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम का नजरिया पहले भी खिलाफ शिर्क था, लेकिन उस नजरिए का इजहार नहीं फरमाते थे। नबी अलैहिस्सलाम कभी कुदरतन हफ्ते की क्लास में, क्योंकि तो हमारे भतीजे साहब ने, बच्चों में से एक बच्चे ने हमसे सवाल किया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो बिरसत से पहले हज किया करते थे, कम से कम एक या दो हज तो किए थे, कुछ उलमा के नजदीक नबी अलैहिस्सलाम हर साल हज करते थे, बेसत से पहले हर साल हज करते थे कुछ उलमा के नजदीक, वरना दो हज किए थे नबी अलैहिस्सलाम ने बेसत से पहले। ठीक है, तो वो हज कैसे करते थे, क्या तरीका होता था? ठीक है, तो हमने उनको जवाब दिया कि हमने कहीं नहीं पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे हज करते थे, हमने कहीं नहीं पढ़ा ये, तो हम कम से कम इतना जरूर कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब कोई गलत काम अगर करने की तरफ बढ़ भी रहे होते थे ना नबुवत मिलने से पहले, तो भी अल्लाह ताला उनको उनकी इसलाह कर दिया करते थे, तो भी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की इसलाह कर दिया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया करते थे। बाकायदा वही नहीं आती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया जाता था। कैसे? जैसे एक दफा इरादा किया कि भाई मैं भी जाके देखूं शादियों में क्या होता है, मक्का मुकरमा की शादियों में क्या होता है, मैं भी देखूं, मैंने कभी देखे नहीं है किसी शादी को होते हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम जब उस तरफ जा रहे थे, आप ससरम को इतनी थकन हुई कि नींद आ गई, और नींद में सारी रात गुजर गई, शादी का वक्त ही खत्म हो गया, नबी अलैहिस्सलाम मौसीकी और नाच गाने की तरफ जा ही नहीं सके। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम जो है वो काबतुल्ला की जो तामीर के अंदर शामिल थे, तो किसी ने मशवरा दिया कि ईंटे उठा करके आप अपने कंधे पे रख रहे हैं, तो आपके कंधे के ऊपर ईंटों की वजह से निशान पड़ रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, जिस्म आपका खराब हो रहा है, आप अपना चादर जो है ना वो ऊपर रख लें और उसके ऊपर ईंटे रख लें। उस जमाने में उन लोगों को परवाही कोई नहीं थी बेलिबास होने की, उनको कोई परवाह नहीं थी। तो नबी अलैहिस्सलाम का ऐसा मशवरा दिया, नबी अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि अच्छा भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम कर ही नहीं सके, बल्कि बेहोश होकर के गिर पड़े। ठीक है, तो उस बच्चे को हमने फिर यही जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने गलत तरीके से हज अल्लाह ताला ने उनको करने ही नहीं दिया होगा, हमें नहीं मालूम, किताब में हमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हमें नहीं मालूम, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को गलत काम से पहले भी रोक दिया था। ठीक है, तो शिर्क के बारे में तो हमें पता है कि नबी अलैहिस्सलाम का पहले भी नजरिया यही था कि ये गलत है, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग काम शुरू नहीं किया। ठीक है, तो इनको नफरत किस बुनियाद पे हुई थी? इनको नफरत नबी अलैहिस्सलाम के नजरियात की बुनियाद पर हुई थी, जब नजरियात का इजहार शुरू किया गया था, उससे पहले नहीं। तो फरमाते हैं कि जी ये इन आयात में गौर फिक्र ही नहीं करते, बल्कि उनसे नफरत और तमस्खुर करते हैं, इसलिए उनको इल्म हकीकत से अंधा कर दिया गया है, राइट, अंधा कर दिया है अल्लाह ताला ने इनको, अंधा कर दिया, इसको उर्दू में कहते हैं इनकी मत मार दी है, इनकी मत मार दी है कि इनको नई बात समझ में आती। अच्छा, अब किसी ने यहाँ मैसेज लिखा है, जरा बड़ा सा थोड़ा तो पढ़ लेते हैं कि जी आप सही कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स को गलत बात कुछ सही बोलो तो नफरत करते हैं और बहुत सी चीजों से महरूम भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा नफरत तो नहीं पर प्रेफरेंस कम हो जाती है, डिपेंड करता है ना आप कितना ज्यादा उनको, आप कितना ज्यादा उनकी इसलाह करेंगे, तो अगर आप इसलाह भी उनकी कम कर रही होती हैं तो नफरत भी कम कर रहे होते हैं, जब आप इसलाह भी ज्यादा शुरू कर देंगे ना तो नफरत भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि कितनी जो है ना वो उनकी गलती की आप इसलाह कर रही हैं या आप उनको गलत कह रही हैं।
नफरत उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा आगे फरमाते हैं, यानी अब जो है ना बाकायदा तर्जुमा कि और जब आप तबलीग के लिए कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। ठीक है, हिजाब मस्तूरा पर्दा हायल करते हैं, लेकिन वो पर्दा ऐसा है जो कि आप अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, वो एक अनदेखा वो पर्दा है। ठीक है, एक यानी फिजिकल पर्दा नहीं है, एक मेटाफिजिकल पर्दा है। और वो पर्दा क्या है कि हम उनके दिलों पर हिजाब डाल देते हैं, इससे कि वो इस कुरान के मकसूद को समझे और उनके कानों में बोझ डाल देते हैं। ठीक है, उनके कानों में बोझ डाल देते हैं, यानी यानी कुछ जो है ना वो जैसे स्टफ भर देते हैं उनके कानों के अंदर, वो भी नजर आने वाला स्टफ नहीं होता। ठीक है, कि जैसे कान में रुई ठूस ली या कान के अंदर जो है वो वैक्स जमा हो गया उनके, नहीं बल्कि वो एक ऐसा बोझ होता है, एक ऐसी चीज होती है उनके कान के अंदर जो कि आप यानी फिजिकल नहीं होती, वो स्पिरिचुअल, वो एक रूहानी किस्म की चीज होती है। तो उनके कानों के अंदर बोझ डाल देते हैं इससे कि वो उनको हिदायत हासिल करने के लिए सुने। ठीक है, यानी वो इसकी वजह क्या बनती है कि वो हिदायत हासिल करने के लिए नहीं सुनते। मतलब ये है कि वो पर्दा उनकी नाफहमी का और इसका है कि वो समझने का इरादा ही नहीं करते कि जिससे वो आपकी शान नबूवत को पहचान सकें। तो ये लोग जो है ना वो असल में इनका इरादा नहीं होता, यानी जिसको के दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि इनको तलब नहीं होती हक की, हक की तलब नहीं होती। तो सुन तो लेते हैं लेकिन हक की तलब की नीयत से नहीं सुनते हैं, इस वजह से जो है ना वो इनको तौफीक नहीं मिलती, इनको हिदायत नहीं मिलती। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ताला ने काफिरों का हाल बयान किया ना। ठीक है, तो काफिरों के हाल के अंदर भी यही वजह बता रहे हैं कि उनको तौफीक क्यों नहीं मिलती। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद के अंदर ईमान वालों को भी मुखातिब हो, ठीक है, ईमान वालों को मुखातिब होकर इसी तरीके से फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो और उनसे पीठ ना फेरो, इस हाल में कि तुम उनकी बात को सुनते हो। या अय्युहल लजीन आमनु अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ठीक है, इस हाल में कि तुम उनको सुनते हो, तुम उनकी अताअत भी तो करो ना। ठीक है ना, इवन ईमान वालों को भी अल्लाह ताला यही नसीहत फरमा रहे हैं, वला तकूनु कल्लदीना, और उन लोगों की तरह तुम मत हो जाना जो कहते हैं कालू समिअना वहुम ला यस्मऊ, जो कहते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन वो असल में नहीं सुनते। वहुम ला यस्मऊ क्या मतलब कि वो सुनते हैं लेकिन तलब के साथ नहीं सुनते, मानने की नीयत से नहीं सुनते, बल्कि कुछ निकालने की नीयत से सुनते हैं, एतराज की नीयत से सुनते हैं। तो तुम उन लोगों के जैसे मत हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को भी नसीहत फरमाते हैं, जैसे कि आप कभी किसी को अगर बुरा समझते हैं या किसी के बारे में आपने यानी सुना ना कि जी ये कितना बुरा इंसान है, इसने कितना जो है वो बुरा काम किया, तो उसकी तो आप बुराई करती हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपने बच्चों को समझाती कि बेटा तुम उसकी तरह मत हो जाना, तुम उसकी तरह मत हो जाना, उसने देखो कितना बुरा काम किया, उसकी वजह से इसको कितनी बुरी सजा मिली, यानी निशान इबरत बन गया, लेकिन बेटा तुम ऐसे मत हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल इसी तरीके से है ना वो अपने मानने वाले बंदों को फिर नसीहत फरमाते हैं कि बेटा बेटा तो खैर नाउज बिल्ला, मतलब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है औलाद से पाक है, बेटा का मतलब मुहावरतन जैसे कहते हैं ना कि तुम तो मेरे मानने वाले हो ना, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे अच्छे बंदे हो ना, अच्छे बंदे हो ना, तुम उनकी तरह मत हो जाना, काफिरों की तरह मत हो जाना। ठीक है, और क्या क्या मुमासलत है, कैसे यानी उनकी तरह मत हो जाना का मतलब कि उनकी तरह मत करना, ये सुनते तो हैं लेकिन तलब के साथ नहीं सुनते। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ना बुराई वाजह करने के लिए कि ये कितनी बुरी बात है कि सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, उसके लिए जो है ना वो इंसानों को ना गैरत दिलाने के लिए ये बात फरमाते हैं, इन्ना शर्रत दवाब इंद अल्लाह, कि जमीन पर चलने वाली चीजों में सबसे ज्यादा जो बुरी चीजें हैं ना अल्लाह ताला के नजदीक वो हैं असुम्मुन अलबुक्म, असुम्मु अलबुक्म, ठीक है, जो के बहरे हैं और गूंगे हैं। الذين لا يعقلون, جو کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, جو کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے لوگ کون ہیں؟ جو کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو کہ ہمارے وجود کے اندر پہلے سے شامل ہے, وہ ہے عقل. ٹھیک ہے نا, اب کوئی تبلیغی جماعت والا ہو بھائی, تو وہ کہے گا سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. نہیں, ہدایت کی نعمت تو ہمارے وجود کے اندر تو نہیں ہے نا, ہدایت کی نعمت تو باہر سے آتی ہے نا, رائٹ, پیغمبروں کے واسطے سے ہمیں ملتی ہے, اور پھر جو اس کو مان لیتا ہے تو پھر وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے ساتھ پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن ہدایت کے ساتھ پیدا نہیں کیا, فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, دین اسلام تو پھر بڑے ہونے کے بعد کوئی شخص باقاعدہ میچور طریقے سے دین اسلام کو اڈاپٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ پیدائشی طور پر وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے, دین اسلام پہ نہیں ہوتا. دین اسلام اور فطرت دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے, پھر وہ نا یا تو ماحول معاشرے کے ذریعے سے وہ بگڑ جاتا ہے, یا پھر وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے. بہرحال, تو عقل اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں آنکھیں دے کر کے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں کان دے کے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر دے کر کے پیدا کیا, ٹھیک ہے نا, ہمیں پورا کا پورا جو انٹرنل ہمارا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ, یہ سب دے کر کے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دماغ دے کے پیدا کیا, اور دماغ کی صلاحیت جو ہے اس کو عقل کہتے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی جو ناقدری کرتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے, اس کو صحیح کام میں استعمال نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے. ان شر الدواب عند اللہ, ٹھیک ہے, بڑی نعمت کی ناقدری کے اوپر بڑی نفرت کی جاتی ہے, بڑی سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو عقل کی ناقدری کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ ایسے شخص کو شر الدواب بھی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سننا جو ہے نا, غور سے بھی سننا اور صحیح نیت کے ساتھ سننا, یہ گویا کہ جڑ ہے بھلائی کی, یہ جڑ ہے بھلائی کی, یہ جڑ ہے ایمان کی, یہ جڑ ہے ہدایت کی, یہ جڑ ہے توفیق کی. ٹھیک ہے, علم ایسے ہی حاصل کیا جاتا ہے, سن سن کر کے, غور سے اور صحیح نیت کے ساتھ سن کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نہیں سن کر کے سن کر رہا ہوتا نا, تو اس کو پھر پتا نہیں چلتا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. بہرحال, تو فرماتے ہیں کہ اور جب آپ قرآن مجید صرف اپنے, اب یہ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں, تھوڑی سی الگ بالکل ہٹ کے نہیں ہے, لیکن کیا کہا آپ نے, انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ جب پچھلی تفسیر کلاس میں آپ نے شیطان کے نئے طریقہ کار گوریلا وارفیئر کا ذکر کیا تھا, میں نے کلاس پھر سے دوبارہ سنی لیکن بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی, پھر سے سمجھا دیجیے. گوریلا وارفیئر کا ذکر کیا تھا, وہ تو کئی دفعہ کیا ہے ذکر, لیکن اس کا مجھے اب پورا کانٹیکسٹ یاد نہیں آ رہا ہے, اس کا کس کانٹیکسٹ میں کیا تھا, وہ کانٹیکسٹ تھوڑا سا یاد کروانا پڑے گا. آپ نے تو دو بار سن لی, ہم نے تو بس ایک دفعہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا, اس کے بعد یاد بھی نہیں ہے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی. گوریلا وارفیئر شاید, کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ موضوع چل رہا ہوتا ہے, تو گمان یہی ہے کہ بات یہ کری تھی کہ اس دور کے اندر شیطان, ہاں صحیح ہے, اب یاد آئی بات, کہ گوریلا وارفیئر نے یہ کہا تھا کہ جب دو دشمن ہوتے ہیں اور دو دشمنوں کے جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ تقریباً برابر برابر ہوتی ہیں, تو ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے نا, وہ یعنی ایک روایتی طریقے سے لڑائی ہوتی ہے, روایتی طریقے سے لڑائی. ٹھیک ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنونشنل وارفیئر, کنونشنل وارفیئر. ٹھیک ہے, کہ جیسے ادھر سے جو ہے وہ توپ کا گولا پھینکے گا, ادھر سے وہ ٹینک کا گولا پھینکے گا, ادھر سے جو ہے یہ پلینز بھیجے گا, ادھر سے وہ بھی اپنے ایئر کرافٹ بھیجیں گے.
ठीक है, इधर से मिसाइल मारे जाएंगे, उधर से भी मिसाइल मारे जाएंगे, ये खुली हुई वॉरफेयर है, क्योंकि दोनों के पास मिसाइल मौजूद हैं, दोनों के पास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, दोनों के पास टैंक्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इधर से भी टैंक्स मारा जाए, उधर से भी, इसको कन्वेंशनल यानी रिवायती तरीके जंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई दुश्मन किसी वजह से कमजोर हो जाए, दूसरा दुश्मन जो है ना वो उसके ऊपर बहुत ही हावी आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा एक दुश्मन के पास ताकत आ जाए और दूसरे दुश्मन के पास जो है वो ताकत बहुत कम हो जाए, तो अब वो जो कमजोर दुश्मन होते हैं ना, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर रिवायती तरीके से नहीं जंग लड़ सकता, ठीक है ना। उसके पास तो मिसाइल अब है ही नहीं, उसके पास तो तैयारी है ही नहीं, उसके पास तो दूसरी चीजें हैं ही नहीं, तो अब वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं लड़ सकता। तो अब वो क्या तरीका इख्तियार करता है, वो गुरिला वॉरफेयर इख्तियार करता है। गुरिला वॉरफेयर का मतलब ये होता है छुप करके हमला करना, ठीक है ना, ताक ताक करके जो है वो घुस करके उसकी दुश्मन की सफों में घुस करके हमला करना। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर जब रूस ने हमला किया ना, तो रूस तो सुपर पावर थी ना, इतना ज्यादा उसके ऊपर उसके पास ताकत थी, तो जब अफगानिस्तान में जो जो मुजाहिदीन थे, अफगान मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं था ना, सवाए छोटी मोटी बंदूकों के उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो फिर रूस के खिलाफ गुरिला वॉरफेयर लड़ते थे, ठीक है। तो गुरिला वॉरफेयर की तारीफ क्या हुई, छुप करके सफों में घुस करके लड़ना, सफों में घुस करके लड़ना और छुप छुप करके मारना, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आई, सबको समझ में आ गई, जो सवाल पूछने वाली है उनके अलावा भी। तो गुरिला वॉरफेयर और रिवायती तरीके जंग के अंदर क्या क्या फर्क है, ठीक है। अब जो है ना, साजिश ने जो आप लोगों को बात कही थी, वो ये कही थी कि इस दौर इस जमाने के अंदर शैतान ने मुसलमानों के खिलाफ गुरेला वॉरफेयर स्टार्ट करी हुई है, गुरेला वॉरफेयर स्टार्ट करी हुई है। क्यों, इसलिए नहीं कि मुसलमान मुल्क जो हैं वो बड़े ताकतवर हो गए हैं और काफिर मुल्क जो है वो कमजोर हो गए हैं, नहीं, मुसलमान मुल्क ताकतवर हो गए और काफिर मुल्क कमजोर हो गए, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुसलमान मुल्क जो है वो पहले भी कमजोर थे, अभी भी कमजोर हैं, बल्कि अब जो है वो पहले के भी मुकाबले में ज्यादा कमजोर हो गए, ठीक है। तो मुल्कों का मसला यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे दो दुश्मन है, कौन से दो दुश्मन है ये आप बता दें, ठीक है, जिनके दरमियान लड़ाई हो रही है ना, क्या ये दो दुश्मन मुसलमान मुल्क और काफिर मुल्क, क्या ये दो दुश्मन हैं, या फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए। जी, दुनिया के अंदर जो लड़ाई है वो क्या मुसलमान मुल्कों और काफिर मुल्कों के दरमियान है, जैसे पहले होती थी सल्तनत उस्मानिया, ये एक मुसलमान मुल्क ही था ना, ठीक है, और फ्रांस जर्मनी ये काफिर मुल्क थे, ठीक है, अब मुसलमान मुल्क नहीं है, तो अब क्या है, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, नहीं, ये जवाब नहीं है इसका, इस सवाल का, नफ्सो शैतान, यानी नफ्स एक एक साइड पर और शैतान दूसरी साइड पर, नफ्स और शैतान के दरमियान जंग हो रही है, नहीं, ईमान और कुफर तो वो किताब है जो कि इंशाल्लाह हम परसों पढ़ेंगे, नहीं भाई, काफिर मुल्क मुसलमान मुल्क, ठीक है, हम आपको ये कह रहे हैं कि काफिर मुल्क और मुसलमान मुल्क तो है ही नहीं, ठीक है ना, मुसलमान भी काफिर मुल्कों के अंदर है और काफिर भी मुसलमान मुल्कों के अंदर है, और मुसलमान मुल्क जो है वो मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम तो नहीं है ना उन मुल्कों के अंदर, ठीक है, इस्लामी मुल्क तो नहीं है ना कोई भी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो जो जंगे हैं ना, जो जंग हो रही है ना, वो जंग फिर किन दो चीजों के दरमियान हो रही है, इन्होंने जवाब दिया कुफर और इस्लाम के दरमियान, कुफर और इस्लाम, एक तरफ कुफर है दूसरी तरफ इस्लाम, ठीक है, एक तरफ कुफर है और दूसरी तरफ इस्लाम। अब ये कुफर और इस्लाम ये क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, कि नबी अलैहिस्सलाम की जात से तो कोई दुश्मनी नहीं थी मुशरिकीन मक्का को, कुरैश को, वलीद को, पलीद को, अबू जहल को, अबू लहब को, नबी अलैहिस्सलाम की जात से तो कोई दुश्मनी नहीं था। किस चीज से नजर, किस चीज से दुश्मनी थी नबी अलैहिस्सलाम की? नबी अलैहिस्सलाम के नजरियात, बिल्कुल सही फरमाया आपने, अकायद नजरियात, बल्कि नजरियात की तरवीज और इशाअत से कुरैश को दुश्मनी, ठीक है ना। तो कुफर और इस्लाम क्या है? ये दो नजरिए, ये दो आइडियोलॉजीज हैं, ये दो नजरिए हैं, ये दो आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो इस वक्त जंग किन दो चीजों के दरमियान दुनिया के अंदर हो रही है? दो आइडियोलॉजीज के दरमियान जंग हो रही है, दो नजरियात के दरमियान जंग हो रही है ना, दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं हो रही, बल्कि सही मानों में अगर कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं दो तहजीबों के दरमियान जंग हो रही है, नहीं, दो तहजीबों के भी दरमियान जंग नहीं हो रही है, ये भी गलत है। दो सिविलाइजेशंस, दो तहजीबें, नहीं, दो तहजीबों के दरमियान जंग नहीं हो रही, पहले हो रही होती थी, अब नहीं हो रही, अब जो है वो सिर्फ दो नजरियात के दरमियान जंग हो रही, ठीक है ना। अब आप को कुछ नजर आता है दुनिया में क्या हो रहा है, ये बता सकते हैं कि कौन सा नजरिया, कुफर का नजरिया और इस्लाम का नजरिया, कौन सा नजरिया इस वक्त मजबूत है, मजबूत, और दूसरा नजरिया जो है वो कमजोर है? आप कहेंगे कुफर का नजरिया मजबूत है और इस्लाम का नजरिया कमजोर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, कुफर का नजरिया कमजोर पड़ गया है, इस्लाम का नजरिया मजबूत हो गया, ठीक है। इस्लाम का नजरिया इस वक्त दुनिया के अंदर मजबूत हो गया, कुफर का नजरिया इस वक्त दुनिया के अंदर कमजोर हो गया, ठीक है। एक मिसाल से समझाते हैं आपको, आपने सुना है डार्विन्स थ्योरी, ठीक है, डार्विन्स थ्योरी, ये डार्विन्स थ्योरी जो है ना, डार्विन उर्दू में लिखते हैं उसको, बड़ी सी लंबी सी सफेद दाढ़ी वाला एक, सर सैयद अहमद खान, ये भी एक डार्विन ही थे, मुसलमान नाम के डार्विन, सैयद डार्विन थे, सैयद सैयद डार्विन, ठीक है। तो आज से कुछ सालों पहले डार्विन्स थ्योरी और सर सैयद अहमद खान थ्योरी, ये बड़ी मजबूत थी, कोई इनको चैलेंज करने वाला नहीं नजर आता, ना डार्विन को चैलेंज करने वाला कोई नजर आता था, ना सर सैयद अहमद खान को चैलेंज करने वाला कोई नजर आता था, ठीक है। इस वक्त ऐसा नहीं है, ठीक है, इस वक्त ऐसा नहीं है, डार्विन को भी बिल्कुल यानी शिकस्ते फाश हो चुकी है, डार्विन्स थ्योरी को भी शिकस्ते फाश हो चुकी है नजरिया डार्विन, ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के नजरिए को भी इंटेलेक्चुअली शिकस्त हो चुकी है, इंटेलेक्चुअली, दोनों को इंटेलेक्चुअली ही शिकस्त हुई, अकली तौर पर शिकस्त हो गई है दोनों, ठीक है, सर सैयद अहमद खान को भी और डार्विन को भी अकली तौर पर शिकस्त हो गई है। अब उनके पास दलाइल नहीं है अपनी अपनी अपने दिफा के लिए, ठीक है, ना डार्विन के पास दलाइल है अपने दिफा के लिए, ना सर सैयद के पास दलाइल है अपने दिफा के लिए, मैं दोनों का एक साथ क्यों इस्तेमाल करूं, उसकी वजह शक्ल भी दोनों की एक जैसी, हरकतें भी दोनों की एक जैसी, और असर भी दोनों का एक जैसा ही, ठीक है, दोनों को शिकस्त हो चुकी है। इस्लाम का नजरिया जो है ना वो इस्टैब्लिश हो चुका है, इस्टैब्लिश हो चुका है, और कुफर का नजरिया जो है ना वो फाश हो चुका है, कुफर का नजरिया जो है वो यानी बिल्कुल शिकस्त और रेख का शिकार हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है ना कुफर जो है ना ये कमजोर पड़ चुका, बिल्कुल कमजोर पड़ चुका, और इस्लाम का नजरिया बिल्कुल गालिब हो चुका। इस वक्त जो है ना वो कुफर गोरिला वॉरफेयर के ऊपर आया, इस वक्त कुफर गोरिला वॉरफेयर के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके पास और कोई चारा नहीं। हम यहाँ पे नजरियात की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं कि उनके पास हथियार कम हो गए, एटम बम उनके पास कम हो गए, पाकिस्तान के पास ज्यादा एटम बम आ गए, नहीं जी, हम एटम बमों की बात ही नहीं कर रहे, हम मिसाइलों की बात ही नहीं कर रहे, मिसाइल उनके पास ज्यादा है, एटम बम उनके पास ज्यादा है, उनके पास एक से एक टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है ना, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ नजरिए की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि उनका नजरिया कमजोर हो गया है और इस्लाम का नजरिया मजबूत से मजबूत तर हुआ चला जा रहा है, सुपर पावर, तो इस वजह से कुफर इस वक्त गोरिला वॉरफेयर के ऊपर उतर गया है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं। अब गोरिला वॉरफेयर क्या होती है? छुप करके हमला करना, सफों में घुस करके नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना? ये होती है ना गोरिला वॉरफेयर। तो अब कुफर क्या कर रहा है? कुफर छुप करके हमला कर रहा है और सफों में घुस करके हमला कर रहा है, ठीक है जी? इस वजह से आपको जो है ना वो ऐसे ऐसे अहवाल नजर आते हैं मुसलमानों के मुसलमान जो है ना वो बहुत ज्यादा दीनदार होंगे। हमने अभी तक शेयर नहीं करी है, कुछ रीजंस हैं उसकी ना शेयर करने के, क्योंकि हर बात से हम एग्री नहीं करते। एक साहब का बयान आया है, इंडिया के जो है वो आलिम दीन है और बहुत ज्यादा जो है वो दीन की मेहनत करने वाले हैं। उन्होंने अपने बयान के अंदर एक बात बताई, ठीक है ना? तो वो बात उन्होंने ये बताई कि वो इंडिया में सीबीएसई बोर्ड होता है आपके यहाँ, ठीक है? तो उस बोर्ड के तहत चलने वाले 56 स्कूल्स चलाते हैं इंडिया, 56 स्कूल्स वो मौलाना साहब चलाते हैं, यानी ही प्रॉब्ली ओन्स इट और ही प्रॉब्ली रन्स देम, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि मुझे अपने एक स्कूल की जो है ना वो एनुअल डे सेलिब्रेशन करनी थी, एनुअल डे की जो 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 होती है इवेंट होता है, तो उसके लिए मैंने अम्बेडकर हॉल को जो है ना वो हायर किया। अम्बेडकर हॉल आप इंडिया वाले हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, अम्बेडकर हॉल बड़ा मशहूर है कोई, सही है? तो अब वो हॉल में जो है ना, जैसे कि मेरी मेरे जो स्कूल है उसकी इवेंट जो है ना वो 2 दिन के बाद होना, तो अब जाहिर सी बात है जो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं तो वो पहले से जाकर के फिर वहां पे देखते हैं ना कि हाँ भाई हॉल कैसा है, वहां पे हमारी जो पब्लिक आएगी वो कैसे बैठेगी और जो है वो स्टेज कैसा होगा और वहां पे हम कैसे जो है वो प्रोग्राम करेंगे। तो कहते हैं मैं 2 दिन पहले वहां पे गया देखने के लिए, ताकि मैं अपने स्कूल के इवेंट को भी जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकूं सही तरीके से। तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक और स्कूल का एनुअल डे इवेंट हो रहा था, एक और स्कूल का एनुअल डे इवेंट हो रहा था, और उस इवेंट में जो ऑडियंस थी ना वो जितने मर्द थे वो इतना सुन्नत वाला लिबास पहने हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे जुम्मे का इज्तिमा हो रहा है, लोग जुमा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, यानी दाढ़ियां टोपियां और पजामे और कुर्ते और इस किस्म के सारे मर्द इस लिबास में थे। और कहते हैं कि सारी औरतें जो वहां पर थी ना वो बुरके में थी, औरतें किस हालत में थी? बुरके में थी, और कहते हैं कि ऐसे भी बुरके थे कि जिनसे नाखून भी नजर ना आए, ऐसे भी बुरके थे जिनमें जिससे नाखून भी नजर ना आए। ये कौन लोग थे? ये पेरेंट्स थे, उस स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स थे जिस स्कूल की उस दिन एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रही थी। और वो स्कूल जो था ना वो मुस्लिम ओन्ड स्कूल था, वो काफिर हिंदू ओन्ड स्कूल नहीं था, वो मुस्लिम ओन्ड स्कूल था, और बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो इस लिबास में आए हुए थे। सोच लें कि वो दुनियादार लोग थे, वो दीनदार लोग थे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग दीनदार लोग थे, लेकिन कहते हैं कि स्टेज के ऊपर बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। कोई आइडल्स टाइप की कोई चीज होगी, कुछ ऐसे एक्शंस कर रहे होंगे जो कि पूजा के अंदर आते हैं, पूजा तो समझते हैं ना सारे के सारे। और ये जो पेरेंट्स थे ना ये हूटिंग नहीं कर रहे थे कि मत करवाओ हमारे बच्चों से पूजा, क्यों कर रहे हैं हमारे बच्चे पूजा, बल्कि ये पेरेंट्स तालियां मार रहे थे ना, इंडिया में जैसे कहते हैं ना तालियां पीट रहे थे, तालियां मार रहे थे, हम कहते हैं तालियां बजाना, पाकिस्तान में तालियां बजाना कहते हैं, कहते हैं ये तालियां पीट रहे थे सारे के साथ। बात समझ में आई? गोरिल्ला वॉरफेयर, तहजीबी तौर पर ये लोग पक्के मुसलमान थे, लेकिन शैतान इनके अकायद को तब्दील कर चुका था, शैतान इनका ईमान इनके अंदर से निकाल चुका था। अब इनको परवाह नहीं थी कि इनके बच्चे जो है वो पूजा कर रहे हैं,
ऊपर से कितने मुसलमान थे, अंदर से कितने जो है वो इस्लाम से खाली थे, राइट? ईमान से खाली। इनको पता ही नहीं कि इस किस्म की हरकत करने से ईमान खत्म हो जाता है, उसके बाद मुसलमान नहीं रहते। अब तुम्हारे बुरके जो है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी दाढ़ियों की, तुम्हारी टोपियों की, तुम्हारे पजामों की कोई हैसियत नहीं है। बात समझ में आई? क्या पहले ऐसा होता था? इवन आज से 15-20 साल पहले आप तस्वुर नहीं कर सकते थे कि दाढ़ी टोपी और बुरके वाले जो है ना वो इस किस्म की हरकत करें। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कुफर आपके अंदर घुस चुका है, राइट? वो इंटरनेट के जरिए से और अपने तालीमी निजाम के जरिए से आपके अंदर घुस चुका है। जाहिरी तौर पर आप दीनदार हो गए हैं। आज जाके देखें हरम के अंदर कितना रश है, राइट? हरमैन के अंदर कितना रश है लोगों का, लेकिन अकायद के हालात पता करें जरा जा करके। अकीदे का क्या मामला है, ईमान का क्या मामला है, चक्कर काट रहे हैं काबतुल्ला के, लेकिन अकीदा अल्लाह के बारे में अकीदा, ठीक है, जो अल्लाह के खिलाफ है उनको भी ओके समझते हैं, जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, उनको भी ओके समझते हैं, राइट? प्लूरलिज्म इसको कहते हैं, प्लूरलिज्म, राइट? हाँ भाई, यूनिवर्सल दीन, सब ठीक है जी। ये जब सब ठीक हो गए तो आप फिर ठीक नहीं रहे, बाकी सब ठीक होए तो नहीं, जाहिर कोई ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप भी अब ठीक नहीं रहे। जब आपने कह दिया कि सब ठीक है, आप मुसलमान नहीं रहे उसके बाद, ठीक है? इसको कहते हैं गुरिला वॉरफेयर। और ये गुरिला वॉरफेयर की वजह क्या है कि दीन इस्लाम का जो नजरिया है ना, ये गालिब आ चुका है और उनका नजरिया जो है वो खत्म हो चुका है। अब दे आर रिजोर्टिंग टू दिस, ठीक है ना? अब वो जो है अपना इंटरनेट इस्तेमाल करके, अपना मोबाइल, ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करके, अपना डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो आपको जो है ना वो अंदर से खत्म कर रहे हैं, आपके सपनों में घुस घुस करके आपको खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना? पास उम्मीद है कि आगे से मैसेज लिखा है, व्हाई दीज जालिम पीपल आर गिवन टू मच खुली छुट्टी, जुल्म पर जुल्म, आई मीन द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, आइडियली वी शुड नॉट सी द न्यूज, कैन यू प्लीज गाइड इन दिस रिगार्ड, आइडियली वी शुड नॉट सी द न्यूज, कैन यू प्लीज सी दिस इन गाइड इन दिस रिगार्ड, वी शुड नॉट सी द न्यूज, क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन जालिम लोगों को खुली छुट्टी क्यों मिली हुई है? तो किसने खुली छुट्टी दी है इनको भाई, किसने खुली छुट्टी दी है पहले ये भी बता दें, तब जब आपका सवाल समझ में आएगा। अल्लाह ने खुली छुट्टी दी हुई है, तो अल्लाह ताला कौन है? अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि अल्लाह ने इन जालिम लोगों को क्यों खुली छुट्टी दी हुई है, तो अल्लाह ताला कौन है? जवाब भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। अल हकीम है या कुछ और है? अभी पीछे बात हुई थी ना कि फ़ेलुल हकीमी ला यखलु अन अल हिकमा, तो अल्लाह ताला अल हकीम है, हम मानते हैं अल्लाह को अल हकीम, अगर मानते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने किसी वजह से इनको छुट्टी दी हुई है ना। खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने क्यों खुली छुट्टी दी हुई है? अल्लाह ताला ने क्या शैतान को छुट्टी नहीं दी हुई? शैतान क्या है, जालिम नहीं है शैतान? अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत नहीं दी, राइट? ये तुम जो है ना वो यौम जो मासून से पहले पहले तक जो है ना वो गुमराह करते रहो, ना तुम्हें मौत आएगी, ना तुम्हें थकन होगी, और तुम्हारे मानने वाले भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये खुली छुट्टी नहीं कहलाती तो और क्या कहलाती? तो अल्लाह ही ने दी है ना शैतान को खुली छुट्टी, क्यों दी है भाई? सही, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने देखना है कि कौन मेरे नबियों की मानता है और कौन शैतान की मानता है, ठीक है ना? तो उस वजह से जब तक शैतान को खुली छुट्टी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है वो, अब खुली छुट्टी तो एक मुहावरा है ना, असल में तो उसको खुली छुट्टी नहीं मिली हुई है, लेकिन इतना तो है ना कि वो उसको मौत नहीं आती, उसको जो है वो थकन नहीं होती, और उसको जो है नजर नहीं आता हमें, तो इस तरह से देखा जाए तो उसको खुली छुट्टी है। तो भैया आजमाइश के लिए दी है ना, क्योंकि ये दुनिया में तो हमें भेजा ही आजमाइश के लिए, है ना, ठीक है? और दूसरी बात आपने लिखी, आइडियली वी शुड नॉट सी द न्यूज, तो वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड वेस्ट आवर टाइम ऑन द न्यूज, ठीक है ना? लेकिन अब आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें उन मौलाना साहब की जो है वो बात नहीं सुननी चाहिए थी। भाई हम तो
ऐसी बातें जब सुनेंगे हमें, हम तो इबरत के लिए सुनते हैं ताकि लोगों को समझाएं, ठीक है ना। आप नहीं सुना करें, आप हमारी सुन लिया करें गौर से, तवज्जो से, तलब के साथ। हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे अल्लाह ताला की मर्जी से, आप ही सुना करें न्यूज़ को, क्योंकि आप जो है वो दरस कुरान अभी नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन जब दरस कुरान देंगे ना, तो फिर जब तक दुनिया के फितनों का नहीं पता होगा ना, आप दरस कुरान को रेलिवेंट नहीं बना सकेंगे किसी के लिए, ठीक है। बहरहाल, तो आपके सर सवाल है वो मैंने खुद ही फिर अज्यूम करके कि भाई आप ये मतलब आपके उसका जवाब देने की कोशिश करिए। 20 मिनट माशाल्लाह एक्स्ट्रा हो गए, तो आप इनका खत्म करते हैं। अलहमदिल्ला।